أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قرآن کریم کے تیسویں اور آخری جز میں ہم سورۃ الضحیٰ کو تمام کر چکے تھے. آج کے درس کا آغاز انشاءاللہ سورۃ الانشراح یا سورۃ الشرح کی تلاوت سے کر رہے ہیں. پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الانشراح یا سورة الشرح کا ترجمہ اور مختصر وضاحت. بنام خدا رحمان رحیم. آیت نمبر ایک. اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کشادہ نہیں کیا؟ دو, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا؟ تین, الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. سورۃ الانشراح یا سورۃ الشرح مکہ مکرمہ کے ان ایام میں نازل ہوئی جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا, اور اس دعوت کے آغاز کو بہت شدید مشکلات کا سامنا تھا, مصیبتوں کا سامنا تھا. اور اگر ظاہری حالات کو دیکھا جاتا تو کوئی امید نظر نہیں آتی تھی کہ یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوگی, اور یہ ذمہ داری, رسالت کی ذمہ داری, دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری, گویا کہ ایک بہت ہی بھاری بوجھ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر توڑے دے رہا تھا, بالخصوص ان مصیبتوں اور مخالفتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو پیش آ رہی تھی. اور یہی الفاظ قرآن مجید نے یہی حالت بیان کی. آیت نمبر تین میں فرمایا, وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. اب یہ کمر کا ٹوٹنا, یہ ایک تعبیر ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. کمر ٹوٹ جانا یعنی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جانا جو بظاہر ناقابل برداشت ہو, بہت بڑی مصیبتیں اور بہت بڑی مشکلات ہو. توجہ فرمائیے, یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ پر اپنے احسان کا تذکرہ کیا ہے, ایک ایسا احسان اور ایک ایسی توفیق کہ جس کی وجہ سے مصیبتیں تو ویسی ہی رہیں ان ایام میں, لیکن ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی قوت اور طاقت رسول اللہ میں اور زیادہ بڑھ گئی اللہ کی نعمت اور اللہ کی اس عنایت سے. اور اس کو قرآن مجید نے نام دیا ہے شرح صدر کا. الم نشرح, کیا ہم نے कुशादा नहीं कर दिया। शर्ह किसी चीज को कुशादा कर देना, किसी चीज को खोल देना। किसे कुशादा कर दिया? लका आपके लिए, सदरक आपका सीना। एक मिसाल के जरिए बात को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर कोई ये कहे कि क्या मुमकिन है कि किसी मसलन सुई के जो का जो सुराख होता है उसके अंदर से ऊंट गुजर जाए, तो बज़ाहिर क्या नज़र आता है? सुई का जो सुराख है वो छोटा होता है और ऊंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर इस ऊंट को इस सुराख में से गुजरना है तो दो तरीके हैं, या तो सुई के सुराख को बहुत बड़ा कर दिया जाए, इतना बड़ा हो जाए कि ऊंट उसके अंदर से गुजर सके, और या ये कि ऊंट को मसलन इतना छोटा कर दिया जाए कि वो सुई के सुराख के अंदर से गुजर सके। अब इस मिसाल को जहन में रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी तहरीक का आगाज करते हैं और एकदम से गोया के पूरा मक्का मुखालफत में उठकर खड़ा हो जाता है। तमाम साहिबान इक्तदार, सरदार, बाअसर लोग मुखालफत में खड़े हो जाते हैं और उनके साथी भी। अब इस तहरीक के रास्ते में डटे रहने के दो तरीके, इस तहरीक की कामयाबी के लिए आगे बढ़ने के दो तरीके, या तो मुश्किलात को ख़त्म कर दिया जाए अल्लाह की तरफ से, तवज्जो से इंशाल्लाह इस बात को समझिएगा, और ये मौजू हम सब की जिंदगियों में पेश आने वाली आजमाइशों और मुश्किलात के साथ ताल्लुक रखता है, और अगर ये समझ में आ जाए तो उसके बाद फिर बहुत सारी मुश्किलात अल्लाह की तरफ राबता करने से इंसान के लिए आसान हो जाती। दो तरीके हैं इस तहरीक को आगे बढ़ाने के, या तो अल्लाह तबारक व तआला किसी मोजज़े से, अपनी कुदरत से जो वो अला कुल्ल शैइन क़दीर है, उस सारी अपोजिशन, सारी जो मुखालफत है, रेजिस्टेंस है इस तहरीक इस्लाम के ख़िलाफ़, अल्लाह उसे ख़त्म कर दे, कुफार को मार डाले, मक्के के सरदारों को ख़त्म कर दे अपनी कुदरत से, एक ये तरीका है। और फिर रसूलुल्लाह बग़ैर किसी मुखालफत के अपने काम को आगे बढ़ाएं, अपनी तबलीग को आगे बढ़ाएं। और दूसरा तरीका ये है कि मुश्किलात तो वैसे ही रहेंगी, हर शख्स अपने इख्तियार से मानना चाहता है तो माने, नहीं मानना चाहता तो ना माने, मुखालफत करना चाहता है तो जितने उसके पास वसाइल हैं, ताकत हैं, ताल्लुकात हैं, उनको बरूए कार लाते हुए रसूलुल्लाह की मुखालफत करे, उसकी मर्जी है। हर एक इंसान को उसके इख्तियार के साथ छोड़ दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से जो करना चाहता है करे। तो मुसीबतें और मुश्किलात वैसी की वैसी रहें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल पर कि जो इन मुश्किलात का सामना कर रहा है, उन पर एक ऐसी खसूसी इनायत कर दे कि जिसके नतीजे में वो मुश्किलात बर्दाश्त करने की ताकत और हौसला और इस्तेकामत और सब्र और हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका की पहली आयत में इसी की तरफ इशारा फरमाया। यानी क्या मतलब? यानी इस तहरीक को मुखालफतों का सामना करना पड़ेगा, कुफार आजमाइश का लाजमा यह है कि हर एक को अपने इख्तियार के मुताबिक अमल करने का के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाए। तो जो अपनी हठधर्मी और अपनी खराबियों की वजह से आपकी मुखालफत कर रहे हैं तो उनको करने दें, लेकिन इसके मुकाबले के लिए अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके सीने को और कुशादा कर देगा। यानी गोया के अगर उसमें इन मुसीबतों को बर्दाश्त करने की ताकत पहले कम थी, उस ताकत को और बढ़ा देगा। फिर एक मिसाल देता हूं आपकी खिदमत में। आप देखते हैं कि ये जो वेट लिफ्टर होते हैं, वजन उठाने का मुकाबला करते हैं, तो एक वो वेट लिफ्टर के जो मिसाल के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लेता है दुनिया में सबसे ज्यादा वजन उठाकर, क्या वो पहले दिन ही इस पोजीशन पर होता है? पहले दिन इस पोजीशन पर नहीं होता। जब वो इस स्पोर्ट में, इस खेल में कदम रखता है, तो उसकी जो वजन उठाने की कैपेसिटी है वो कम होती है, लेकिन वो मेहनत करता है, मुसलसल मेहनत करता है, तकलीफ उठाता है, और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के नतीजे में उसकी वो जो वजन उठाने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब वजन वही है जो पहले वो नहीं उठा सकता था, लेकिन इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। इसी मिसाल को आप जहन में रखें शरह सदर के बारे में, कि मुसीबतें वही हैं, मुश्किलात वही हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को शरह सदर अता फरमा दिया। और ये दुआ हर मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला से करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि या अल्लाह हमें आजमाइश में ना डालना, ये दुआ ही सही नहीं है। ये दुनिया है ही आजमाइश के लिए। जैसे सूरतुल फजर में पहले बयान हो चुका, अगर अल्लाह ताला कोई चीज ले लेता है देकर, वो भी आजमाइश है, और अल्लाह ताला कोई चीज दे देता है किसी को, वो भी आजमाइश है। आजमाइश से फरार नहीं है इस दुनिया में, दुनिया है ही आजमाइश। हम जिस हाल में भी हैं, इम्तिहान में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, और घड़ी की सुइयां चल रही हैं, और ये इम्तिहान ऐसा है जिसका हमें ये भी नहीं मालूम कि कब टाइम खत्म होने का ऐलान कर दिया जाएगा, कब हमारी मौत आ जाएगी। तो एक बड़ी हसास, बड़ी सेंसिटिव, बड़ी क्रिटिकल हालत में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आजमाइश से फरार तो हो नहीं सकता, आजमाइश तो है। तो क्या मांगना चाहिए? वही दुआ कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जुबान से पहली दुआ निकली थी, जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ए मूसा, हमने आपको चुन लिया है, और आपने फिरौन को जाकर दावत तौहीद देनी है, वो सरकश हो चुका है जमीन में, आपने उसको अल्लाह की इताअत की दावत देनी है। अब हजरत मूसा तो पले ही फिरौन के घर में थे, फौरन जहन में तसव्वुर आया होगा फिरौन की ताकत, उसकी फौज, उसका तकब्बुर, उसका अपने मुखालिफिन को सख्त सजाएं देना, लोगों को गुलाम बनाकर रखना, वो सारा जाहो जलाल हजरत मूसा के जहन में आया होगा। तो क्या दुआ मुंह से निकली इस बड़ी ताकत फिरौन का मुकाबला करने के लिए? फरमाया रब इशरहली सदरी, ए मेरे रब, मुझे शरह सदर अता फरमा, मेरे सीने को खोल दे। यानी वो जो इस रिसालत के बोझ को उठाने की जो ताकत है मेरी, जो मेरी हिम्मत है, जो मेरा इरादा है, जो मेरी कुव्वत बर्दाश्त है, जो मेरी कुव्वत सब्र है, इन सब को मिला ले, इसमें ए अल्लाह इजाफा फरमा दे, ताकि मैं फिरौन का सामना कर सकूं। तो यही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली दुआ हर मोमिन को इस दुनिया में, इस दुनिया की मुश्किलात, इसकी आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगनी चाहिए, रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ए मेरे रब, मेरे सीने को खोल दे। सीने को खोल दे यानी मेरी बर्दाश्त, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरा सब्र, मेरी तमाम अच्छी सिफात में इजाफा फरमा दे, ताकि मैं इस आजमाइश को, आजमाइश तो मेरी होनी है, इससे तो फरार नहीं है, इस आजमाइश से मैं कामयाबी के साथ गुजर सकूं और कामयाब हो सकूं। तो इन वजाहतों के नतीजे में इंशाअल्लाह ये वाज़े, अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल पर अपने इस एहसान का तज़किरा फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने ए रसूल आपके लिए आपके सीने को कुशादा नहीं कर दिया। तो इंशाअल्लाह ये सीने के कुशादा होने का माना वाज़े है। और इस सीने के कुशादा होने का नतीजा क्या निकला, वो बोझ जो पहले कमर तोड़ रहा था अब वो बोझ गोया हट गया है। दर हकीकत हटा नहीं है, चूंकि इस बोझ से मुराद कोई कोई मादी वजन तो नहीं है, जाहिर है। वो बोझ जो उन मुसीबतों की वजह से कमर तोड़ रहा था, उन मुखालफतों की वजह से कमर तोड़ रहा था, ऐसा शरह सदर अता किया अल्लाह ने अपने नबी को कि ऐसा, कुरान की इस आयत के मुताबिक, ऐसा लगा जैसे बोझ ही कोई नहीं है, जैसे कि वो भारी बोझ जो कमर तोड़ रहा था वो बोझ किसी ने कमर से हटाकर नीचे उतार दिया हो। आयत नंबर 2, ववदअना, और हमने उतार दिया, अनका, आपसे, विज्रका, आपका वो बोझ, कौन सा बोझ, आयत नंबर 3, अल्लदी, जिसने, अनकदा, तोड़ दी थी, वहरक, आपकी पुश्त, आपकी कमर। अल्लाह ने शरह सदर के जरिए आपका वो बोझ उतार दिया जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी। 4, और अब उस जमाने में भी और आने वाले जमाने के बारे में भी रसूलुल्लाह को एक खुशखबरी सुनाई जा रही है कि ऐ रसूल, आपके मुखालिफीन, इनके नाम और इनके जिक्र तो बद जिक्र बन जाएंगे, बुराई का जिक्र बन जाएंगे, और आपके नाम को अल्लाह तबारक व तआला आपके जिक्र को खुदा बंदे आलम बुलंद कर देगा। आयत नंबर 4, वरफअना लक ज़िक्रक, और हमने बुलंद कर दिया आपके लिए आपका जिक्र। और आप देखिए, शदीद तरीन मुश्किलात के जमाने में अल्लाह ने ये जो वादा किया, उस जमाने से लेकर आज के जमाने तक और आज से लेके कयामत तक, वरफअना लक ज़िक्रक, रसूलुल्लाह का नाम आते ही जुबान पर दुरूद व सलाम जारी हो जाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, व रफअना लक ज़िक्रक, और हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। आपके लिए यानी आप की अजमत के लिए, आपकी तहरीक की कामयाबी के नतीजे में हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि आपका जिक्र बुलंद रहेगा और आपकी मुखालफत करने वालों का जिक्र पस्तियों में खुदा बंदे आलम डाल देगा। आयत नंबर 5 और आयत नंबर 6, अगरचे इस सूरह मुबारका का जो मुस्तकीम खिताब है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन हर कुरान पर ईमान रखने वाले को ये सूरह मुबारका और इसकी आयात पैगाम दे रही है कि डटे रहो, अल्लाह से राबते में रहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तौफीकात, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा सब्र उससे मांगो, वो बढ़ा देगा। और अब इन दो आयात को समझने के लिए आप तवज्जो कीजिए, आयत का तर्जुमा सुन लीजिए। आयत नंबर 5, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, तो बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। 6, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, फिर तकरार फरमाई, ताकीद हो जाए ताकि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। वो खालिक के कायनात, वो कायनात का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला इस कायनात की एक हकीकत बता रहा है अपने रसूल को और हर कुरान पर ईमान रखने वाले को। और वो क्या है कि किसी मुश्किल को दायमी मत समझना वरना हौसला हार दोगे। हमेशा अल्लाह की रहमत और मुश्किल के बाद आसानी की उम्मीद रखना। अल्लाह तुम्हें बता रहा है ताकीद के साथ, इन्ना बेशक मअल उस्र युसरन, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। फिर तकरार फरमाई, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। अब आप दो इंसानों की हालत का तसव्वुर कीजिए, एक दोनों मुश्किल में गिरफ्तार है, शदीद मुश्किल में गिरफ्तार है, लेकिन एक की क्या हालत है कि उसको यकीन नहीं है कि मेरी ये मुश्किल कभी हल होगी या हल नहीं होगी, और दूसरे को यकीन हो कि मेरी इस मुश्किल ने हल होना है और इस मुश्किल के बाद आराम का, सुकून का, अच्छाई का जमाना भी आना है मेरे पास। दोनों में से कौन डटा रहेगा, हिम्मत से खड़ा रहेगा, मुकाबला करेगा, मेहनत करेगा? ये दूसरा, कि जिसको यकीन हो कि ये मुश्किल हमेशा नहीं रहेगी मुझ पर, लेकिन इसके मुकाबले में वो शख्स के जो कहे पता नहीं, सारी उम्र ही मेरी ऐसी गुजरेगी और सारी उम्र भी मुझे इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा या नहीं, अगर मैं मेहनत करूं तो ये मसलन मुसीबत मुझसे टल भी सकती है। तो आप अगर इंसान की नफ्सियात को भी मद्देनजर रखें कि खाले के कायनात और खाले के नफ्सियात से बेहतर कौन इंसानों को रहनुमाई करेगा मुसीबतों का मुकाबला करने की। और आप देखिए, सबसे अजीम हस्ती कौन है अल्लाह के बाद? रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह को यह गाइडेंस दी जा रही है कुरान में कि बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते शायद कि उस वक्त जब इस्लाम की इब्तदा हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को किस कदर शदीद मुश्किलात का सामना था। कामयाबी अगर दुनिया की, दुनियादारी की निगाह से देखा जाए तो कामयाबी की कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई दे रही थी। सब ताकतवर, पूरा मुआशरा आपके खिलाफ है और चंद लोग के जो मुआशरे के कमजोर तबके से ताल्लुक रखते हैं वो आपके साथ हैं और उनको मुसलसल मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, अजियतें दी जा रही हैं। मैं और आप उस वक्त का शायद सही तरह तसव्वुर भी ना कर सके। इस कैफियत में अल्लाह तबारक व तआला, देखिए, दुनिया के हकायक से मुंह फेरने का नाम दीन नहीं है कि मैं, एक मुसीबत मेरे सामने आई, एक मुश्किल मेरे सामने आई है, तो अगर मैं एक मोमिन हूं तो मुझे उसका मुकाबला करना है या नहीं, मैं उससे मुंह फेर कर, चुरा कर एक कोने में बैठ के तस्बीह निकालना शुरू हो जाऊं कि अल्लाह ताला इस मुसीबत को मुझसे दूर कर देगा या नहीं, मुझे फेस करना है, मुझे मैदान में डटे रहना है, मुझे मुश्किलात का सामना करना है, मुझे मेहनत करनी है। कुछ लोग दीन को गलत समझे, आयात कुरान हकीकत दीन के सामने रखती। अल्लाह अपने रसूल से कह रहा है कि ये मुश्किल, इसको आपने फेस करना है और इस मुश्किल के बाद आसानी भी आएगी, और फिर ताकीद से फरमाया कि इस मुश्किल के साथ आसानी भी है, ये मुश्किलात हमेशा नहीं रहेंगी। ये कुरान का पैगाम है एक मोमिन के लिए कि मुश्किलात से भागना नहीं है, मुश्किलात का मुकाबला करना है। और अगली जो आयत नंबर 7 और 8 है वो मजीद वजाहत कर देंगे। आयत नंबर 7 में फरमाया, बस 5 और 6 नंबर आयत में ये वजाहत कर दी, यानी उम्मीद दिला दी कि तुम यकीन रखो कि आसानी आनी है, लिहाजा मैदान नहीं छोड़ना, हौसला नहीं हारना, शिकस्त नहीं खानी, हथियार नहीं फेंकने जमाने की मुश्किलात और मुखालफतों के सामने। और उस आसानी तक पहुंचने की रविश क्या है? आयत नंबर 7, आप देखिए दीन इस्लाम कितना प्रैक्टिकल दीन है। रसूलुल्लाह से यह नहीं कहा जा रहा कि मुश्किल को आसानी में बदलने के लिए आप एक कोने में जाके बैठ जाएं और सिर्फ दुआएं मांगे और आप तस्बीहें करें। अलबत्ता मैं इशारा कर दूं कि जब मैं ये बात करता हूं दुआ और तस्बी की माज अल्लाह नफी मुराद नहीं है, बल्कि मुराद क्या है कि अपनी अमली जिम्मेदारी को अंजाम न देना, मैदान में मौजूद न रहना, इस्तकामत न दिखाना जो दीन का हुक्म है, और जिम्मेदारी से काम चोरी करके एक कोने में बैठ के कहना या अल्लाह तू कर दे, मैं तेरा जिक्र करूं तू ये काम कर दे। ये मिजाज कुरान मजीद ने यहूदियों का बताया, बनी इसराइल जो गुमराह हो गए थे, जिन्होंने हजरत मूसा से कहा था तू और तेरा रब जाके जंग करो, लड़ो इस कौम के साथ, हम यहां पर बैठे हुए। ये मिजाज वो मिजाज है। कुरान मोमिन को ये रिकमेंड नहीं करता। कुरान मोमिन से क्या कहता है? जो तुझसे कहा जा रहा है तू मैदान में डट जा, तू इस्तकामत दिखा, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी कर, खुदा बंदे आलम तुझसे ज्यादा ताकतवर दुश्मनों के मुकाबले में तेरी ताईद करेगा, तुझे फतह मिलेगी, नुसरत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। लिहाजा ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सही असल तस्वीर क्या है? इंसान मैदान में डटा रहे, खुदा की रहमत पर उम्मीद रखे कि मेरा अमल, मेरी मेहनत नतीजा लाएगी हतमन, अल्लाह तबारक व तआला के पास मेरा अजर, मेरे काम की मेरी मेहनत जाया नहीं होगी, और अल्लाह से दुआ भी मांगे। लेकिन अगर अमल न करे और सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगे तो ये मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत नकल की गई है और बज़ाहिर नहजुल बलागा के अंदर भी ये मौजूद है, अद्दाई बिला अमलिन, बगैर अमल के दुआ करने वाला, इसकी हालत कैसी है? कर्रामी बिला वतरिन, ऐसे है जैसे बगैर कमान के तीर चलाने वाला। मिसाल बड़ी वाजे है, कमान किस लिए होती है? ताकि तीर पूरी कुवत से जाए और सही निशाने पर जाके लगे। लेकिन कमान के बगैर, आपने देखा है कभी जंगों में, पुराने जमानों की जंगों की मसलन फिल्में वगैरह देखी होंगी, बगैर कमान के तीर चलाते थे, कमानें बनाई जाती थी ताकि तीर से सही भरपूर इस्तफादा किया जा सके। तो अगर कोई दुआ मांगे, मौला के लफ्जों में, अगर कोई दुआ मांगे और अमल ना करे तो ये ऐसा ही है कि बगैर कमान के तीर चला रहा है, निशाने पर नहीं लगेगा, और जो काम तीर ने करना है वो काम, वो हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया फइन्नमा अल उस्र युस्रन, तो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, और छह यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। ये याद रखिए कि ये जो फरमाया जा रहा है कि साथ आसानी है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किल के उसी वक्त, ऐन उसी वक्त जब मुश्किल है उसके साथ साथ आसानी भी है, ये मुराद नहीं है। लेकिन ये भरपूर उम्मीद दिलाने के लिए, ताकि मोमिन मुसीबत से ना घबराए और ऐसे समझे जैसे आसानी गोया इसके पीछे पीछे आ रही है, गोया इसके साथ ही है, अगरचे उस वक्त आसानी नहीं है, लेकिन उस आसानी को दूर ना समझे, क्योंकि इंसान को जब मंजिल करीब महसूस होती है उसका जज्बा और जोश और बढ़ जाता है। आप कुरान का अंदाज देखिए, नहीं कहा कि इन बादल उस्र युस्रन, कि सुनने वाला क्या समझेगा, पता नहीं कितनी देर बाद आसानी आती है। फरमाया इन मअल उस्र युस्रन, साथ ही है, थोड़ी सी और सब्र और इस्तकामत दिखा, और जब मंजिल करीब इंसान को लग रही हो तो एक दफा एक नया जज्बा उसमें भर जाता है। हमें याद है कि कॉलेज के जमाने में जब ये लंबी मैराथन रेस होती थी साल के तौर पर, तो क्रॉस कंट्री बहुत लंबी चंद किलोमीटर भागना होता था, तो उसमें जब वो उसके जो हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स होते थे, जब वो उस जगह के करीब आ जाते थे जहां पे रेस खत्म होनी है, तो एक दफा फिर पूरे जोर से भागते थे, हालांकि थके होते थे लेकिन मंजिल को करीब देखकर एक दफा पूरा जोर लगा देते थे ताकि कोई पोजीशन ले सके, अपनी जो उस रेस खत्म होने के पॉइंट तक पहुंचने की जो टाइमिंग है उसको और बेहतर बना सके। तो ये मअल उस्र युस्रन, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसी ताबीर है, ऐसा जुमला है कि हिम्मत नहीं हारो और पूरा जोर लगा दो, खुदा बंदे आलम कामयाबी उसने जो कायनात बनाई है मुश्किलात के साथ आसानियां रखी हैं। लेकिन इस मुश्किल से गुजर कर आसानी तक पहुंचने का तरीका क्या है कि सूरह अलम नशरा का 100 मरतबा विर्द करो, तस्बीह निकालो सूरह अलम नशरा की और उसके बाद देखो कि अल्लाह ताला क्या करता है। ये तहरीफ शुदा तसव्वुर है, ये इंसानों को बेअमल और बेकार और सुस्त बनाने वाला दीन का तसव्वुर है कि जो बाज ये पीरी मुरीदी के चक्रों में हो जाता है। हमारे बुजुर्ग ने ख्वाब देखा था, उसमें उनको बुजुर्ग आए थे, उन्होंने कहा 100 मरतबा सूरह शर की तिलावत करो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ख्वाबों वाला दीन, ख्यालों वाला दीन, इंकशाफात वाला दीन, जिन्नात वाला दीन, पता नहीं क्या क्या खुराफात वाला दीन, क्यों? ये सजा है उसकी जिसने कुरान से दीन को नहीं सीखा। अब वो अल्लाह जो अपने रसूल से कह रहा है इन्नमा अल उस्र युस्रा, क्या तरीका है इस आसानी तक पहुंचने का, मुश्किलात से उबूर का? साथ फइदा फरगत फनसब व इला रब्बिका फरगब, ये दो आयतों पे तवज्जो फरमाएं। पहले तर्जमा सुनिए, आयत नंबर 7, तो जब आप फारिग हो जाएं तो डट जाएं, खड़े हो जाएं, किसके लिए? 8, व इला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ रगबत कीजिए। क्या मतलब? आप जब अपनी किसी जिम्मेदारी से फारिग हो, किसी काम से फारिग हो, तो अपने रब की इबादत के लिए खुद को थका दीजिए। क्यों? सूरह मुज़म्मिल गुजर चुकी 29वें जुज में, आपको याद होगा वहां पे क्या फरमाया था कि जब फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, तहज्जुद का जब हुक्म दिया अल्लाह ने, तो क्या हिकमत बताई क्यों आपने रात की ये इबादत करनी है, रात की ये रात का क़याम, रात का खड़ा होना, अल्लाह के सामने ये काम आपने करना है। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला, बेशक अनकरीब हम ए रसूल आप पर एक भारी कौल नाजिल करने वाले हैं, यानी एक भारी जिम्मेदारी आप पर डालने वाले, और इस भारी बोझ को उठाने के लिए ये तहज्जुद की नमाज आपकी ताकत को, आपके हौसले और हिम्मत इसको और ज्यादा बढ़ा देगी, वसअत आ जाएगी और ज्यादा आपकी हिम्मत और हौसले में। बस अल्लाह की बारगाह में इबादत और अपनी जिम्मेदारियां अदा करना। फइदा फरगता, जब आप अपनी जो काम कर रहे हैं तबलीगात दीन का, जब आप उससे फारिग हो जाएं, तो फन सब अपने आप को नस्ब कर दें, अपने आप को खड़ा कर दें, थका दें, वह इला रब्बी का फरगब, और अपने रब की तरफ रगबत करें, यानी खुदावंदे आलम की इबादत से आप ताकत लीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को अदा कीजिए। जब वो जिम्मेदारियां अदा कर चुके, यहां ये नहीं कहा जा रहा कि बस आप इबादत करें और जिम्मेदारियों को छोड़ दें, आपने तबलीग करनी है, आपने अमली कदम उठाने हैं, जब वो काम जो आपने करने हैं वो कर चुके, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होने के जरिए से اور زیادہ اپنی توفیقات، اپنے شرح صدر، اپنی ہمت اور حوصلے میں اضافہ طلب کریں عبادت کے ذریعے سے. اور یہی بہترین تصویر ہے کہ جو قرآن مجید ہر مومن کو گویا کہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تجھے بھیجا گیا ہے، تیری ذمہ داریاں ہیں، تو نے محنت کرنی ہے، رزق حلال کی کوشش کرنی ہے، دین اسلام کے اہداف کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، جس قدر تجھ سے ہو سکے تو نے یہ کام کرنا ہے. تیرا ہدف آخرت ہے، لیکن دنیا میں جو اللہ نے تیری ذمہ داریاں تیرے کندھوں پہ ڈالی ہیں وہ تو نے ادا کرنی ہے، ڈٹ کر میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا. اس کے لیے تجھے توفیقات کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطے کو گہرا کرنے سے، اور وہ ہے عبادت کے ذریعے سے. لہذا آپ دیکھیے کہ پانچ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس اسلام کا جو پلان ہے اور جو ہر روز کا جو روٹین ہے، پانچ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا بندے کا خدا سے رابطہ. ہم سمجھیں اس عبادت کی تاثیر کو، حقیقی تصویر کو دیکھنے کی کوشش کریں. رسول اللہ کی نماز رسول اللہ کی طاقت، ہمت، حوصلے میں اور اضافے کا باعث ہے. مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جب شرح صدر ہو رہی ہے اس سے وہ مشکلات جو ناقابل برداشت لگ رہی تھی اب قابل برداشت، اب اس طرح سے نہیں لگ رہی. جیسے ہم نے آپ کو وہ ویٹ اٹھانے والے کی مثال دی، پہلے دن وہ وزن نہیں اٹھا سکتا تھا جو محنت اور کوشش اور پریکٹس کے نتیجے میں بعد میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیتا. تو یہ اللہ سے رابطہ، اس کیپیسٹی، اس طاقت، اس ہمت، حوصلے، صبر، استقامت، یا ہم کہیں شرح صدر، اس میں اضافے کا باعث ہے. بس ذمہ داریاں ادا کرنا ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں آنے والی مصیبتیں، مشکلات، ان میں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں اس سورہ مبارکہ کے لفظوں میں، شرح صدر اللہ سے حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کی جائے، اور اس عبادت کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے ذریعے ان مشکلات کو اپنے لیے گویا کہ آسان بنا لیا جائے. مشکلات وہی ہیں، لیکن آپ کی طاقت بڑھ گئی، آپ کا اللہ پر توکل بڑھ گیا، آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ بڑھ گیا. بس اسلام رسول اللہ کو بھی کوئی ایسا راستہ نہیں بتا رہا کہ آپ کچھ پڑھ کے پھونکیں تو یہ ساری مخالفتیں ختم ہو جائیں گی. نہیں، آپ نے کام جاری رکھنا ہے، اور یہ جو مخالفتیں کر رہے ہیں انہوں نے کرنی ہے، یہی تو ان کی آزمائش، ہر کوئی با اختیار ہے. لیکن آپ اپنی طاقت کو بڑھائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ رابطے کو اور زیادہ کر کے. اب آپ توجہ کیجئے، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکا دیں، اپنے آپ کو کھڑا کر دیں. کس میں؟ آٹھ نمبر آیت، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، اپنے رب کی طرف عبادت کے ذریعے اور اس سے رابطے کے ذریعے رغبت کیجئے. ہم آپ کو عرض کر دیں، چونکہ وقت ہمارے پاس یہ 39 منٹس ہو چکے ہیں، اگلی سورہ مبارکہ 3 اس درس میں ہم شروع نہیں کر پائیں گے، اسی کی بات کو ہم مکمل کر دیں. اس پوری سورہ مبارکہ شرح کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کو اس دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں اور مخالفتیں کس طرح اس کو فیس کرنا ہے، بہترین طریقہ بتایا گیا ہے، بہترین ہمت بندھائی گئی ہے. نمبر ایک، شرح صدر اللہ سے مانگی جائے. جب شرح صدر مل جائے گی تو مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں ہمارے لیے انہیں برداشت کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. और दूसरी बात, दूसरा नुक्ता कि हमेशा यकीन रखें कि मुश्किल जो भी है दायमी नहीं है, गोया आसानी इसके इतने पीछे आ रही है जैसे इसके साथ साथ ही आ रही है। जैसे आप ट्रेन को देखते हैं, एक जो ट्रेन का डब्बा होता है दूसरा उसके बाद में आ रहा होता है लेकिन साथ साथ आ रहे होते हैं। ये तसव्वुर है इन्नमा अल उस्र युस्रन का। तो जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि मेरे रब ने मुझे बताया कि मुश्किल के साथ ही आसानी चली आ रही है, गोया कि जुड़ी हुई है इसके साथ पीछे पीछे, तो अब ये हिम्मत और हौसला नहीं हारेगा। और तीसरी बात क्या कि जब जो जिम्मेदारियां बनती हैं आपकी जिंदगी की, मिसाल के तौर पर जो हमारी हमारा काम है रिज़्क हलाल के लिए जद्दोजहद करते हैं, या हमने मसलन पढ़ाई जो भी काम करना है, अलबत्ता जाहिर है कि जैसे पहले कुरान में कई बार बयान हो चुका कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने खल्क नहीं किया जिन्नों और इंसानों को मगर इसलिए कि मेरी इबादत करें। और हमने अर्ज़ किया था वहाँ पर सूरह दारियात में ये आयत गुजरी थी उसके आखिर में, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम अल्लाह ने इसलिए खल्क किया कि हर टाइम नमाज में खड़ा रहे, हर टाइम रोज़ा रखे, हर टाइम मसलन कोई ख़ास जिसे हम इबादत कहते हैं जो हमारे जहन में तसव्वुर है वो करता रहे, ना इससे मतलब ये नहीं है। इससे मतलब ये कि जो भी काम कर रहा हो अल्लाह के अब्द के तौर पर लोग उसको देखें। वो पढ़ाई कर रहा है, स्कूल जा रहा है, वो कॉलेज जा रहा है, वो नौकरी पे जा रहा है, वो कारोबार पे जा रहा है, वो कोई काम कर रहा है, उसको देखने वालों को पता चल जाता है ये किसी का अब्द है, ये अल्लाह का अब्द है, इसलिए मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया, ये देखना चाहता हूं मैं, अल्लाह ताला ये फरमा रहा है। तो बस जो दुनिया में हमने काम करने हैं वो भी खुदा की खातिर है, तो फिर दुनिया में भी फवायद मिलेंगे जो उस मेहनत का नतीजा होता है, और आखिरत में भी उसका अजर ऐसे ही मिलेगा जैसे इबादत का अजर मिलता है। तो मोमिन को अल्लाह ताला ये सजेस्ट कर रहा है और ये हुक्म दे रहा है कि तू अपने काम कर डट के इस्तकामत के साथ, जितनी बड़ी मुसीबत है मेरी रहमत से मायूस ना हो, जितनी बड़ी मुश्किल है जान ले मैं बता रहा हूं मैंने खल्क किया कायनात कि आसानी उसके पीछे पीछे चली आ रही है, तो कितना ज्यादा हौसला मिल जाएगा इंसान को, कभी शिकस्त नहीं खाएगा। आपने बाज़ुकात शायद देखा हो कि एक आध दफा किसी वीडियो में देखा कि जो रेस में भागने वाला जो वो स्पोर्ट्समैन है वो उसको कोई तकलीफ हो जाती है और वो बिल्कुल वो जो एंड की लाइन है जहां पे रेस खत्म होती है उसके करीब जाकर वो गिर पड़ता है, तो लोग उसे कहते हैं कि थोड़ा सा चंद मीटर्स का फासला रह गया उसे कवर करो, और वो पूरी हिम्मत से बर्दाश्त करके उस तकलीफ को बिलाखिर उस एंड की लाइन पर पहुंच जाता है। जब मंजिल सामने नजर आ रही हो तो हौसला बढ़ जाता है, तकलीफ बर्दाश्त इंसान और ज्यादा कर सकता है। ये सूरह शर्ह एक प्रैक्टिकल तरीन इंसान को बेहतरीन हिम्मत और हौसले वाला इंसान बनाने के लिए, बेहतरीन डट जाने वाला, इस्तकामत वाला, कभी हौसला ना हारने वाला, कभी मायूस ना होने वाला वो इंसान देखना चाहता है कुरान एक मोमिन को। और फिर जब अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर ले तो अपने रब की तरफ रगबत करे, अपने रब की इबादत करे और वहां से एनर्जी ले, गोया के अपने रूह की एनर्जी ले आगे बढ़ने के लिए, गोया के दोबारा अपनी हिम्मत, अपने हौसले, अपनी रूह को चार्ज कर ले खुदा के जिक्र से, खुदा के साथ राबता बेहतर करने से इंसान बेहतरीन हिम्मत और हौसला और तौफीकात हासिल करता है। क्या ये तरीका कुरान का बताया हुआ बेहतर है या तावीज़ गंडे करना? और इधर से हमने बाज़ देखा है, क्योंकि हम ऐसे बिलाखिर मैं खुद एक देहात से मेरा ताल्लुक़ है, तो बाज़ मैंने पीरों वगैरह की हरकत देखी है, वो अपने मुरीदों के मुंह पे थूक रहे होते हैं बरकत के लिए। तो वलकद करमना बनी आदम, अल्लाह ताला फरमाता है हमने बनी आदम, आदम की औलाद को बड़ा मोहतरम बनाया। लेकिन जब इंसान अल्लाह जैसी ज़ात को छोड़कर अपनी जहालत की वजह से या किसी भी अपनी बदबख्ती की वजह से अल्लाह से राबते की जगह फिर मखलूकात के दर पे झुकना शुरू होता है, तो फिर ऐसे ही मनाजिर और सीन देखने में आते हैं। परवरदिगार आलम कुरान मजीद से जो तसव्वुर मिलता है कायनात का, कुरान मजीद से जो तसव्वुर मिलता है जिंदगी कैसे गुजारी जाए, कहाँ झुकना है कहाँ नहीं झुकना। एक कामयाब इंसान जिसे कुरान मोमिन कहता है, मोमिन यानी कामयाब इंसान, मोमिन यानी शुजा, मोमिन यानी डट जाने वाला, मोमिन यानी सिवाय अल्लाह के किसी के आगे न झुकने वाला, मोमिन यानी कभी बदतरीन मुश्किलात में भी हिम्मत न हारने वाला और आसानी की मुश्किल के बाद उम्मीद रखने वाला, अपने रब के साथ हमेशा मरबूत रहने वाला। छोटी सी मुख्तसर सी सूरह है, सूरह शरह या इंशराह भी इसको कहा जाता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस सूरह मुबारका का जो मैसेज है वो वाज़े होगा। इख्तिताम के तौर पर हम कर दें कि ये आखिरी आयत के बारे में, जब मुश्किल के साथ आसानी है तो अब क्या करें, तो किसी फरीजे से फारिग हो जाएं तो इबादत और दुआ से अपने आप को मशक्कत में रखें, अपने आप को सख्तियों की आदत डालें, अपने नफ्स को कि जो आराम तलब और आसानी तलब है उसको मुश्किलात में रखें। अगर आप नफ्स को मुश्किलात में नहीं रखेंगे, नफ्स आपको मुश्किलात में डाल देगा अपनी जोरदार मुतालबों से जो हमेशा अक्सर औकात नाजायज कामों के होते हैं। जब जब मुश्किल के साथ आसानी है अल्लाह ने बता दिया तो फिर क्या करें, तो किसी फरीजे से फारिग हो जाए तो इबादत और दुआ से अपने आप को मशक्कत में रखें और इसी इबादत के जरिए अल्लाह की तरफ रागिब रहे, ताकि इस मशक्कत से राहत और मुश्किल से आसानी मिल जाए। जिम्मेदारियां भी अदा करनी है डट कर, कामयाबी की उम्मीद भी रखनी है और उसके बाद अल्लाह ताला के साथ की तरफ रगबत करनी है, इबादत करनी है। तफसीर मीज़ान और तफसीर मजमाउल बयान, इन दोनों तफसीर में इस आयत की ये तफसीर इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफर सादिक अलैहिमस्सलातु वस्सलाम से, उनके फरामीन से ये तफसीर इस आयत की बताई गई है। दीगर भी नुकात हैं लेकिन हम इसी पर इक्तफा करते हैं। खुदावंद आलम कुरानी मोमिन, कुरानी इंसान, कुरानी सिफात जो बताई गई है, उन सिफात को अपने अंदर रखने वाला इंसान बनने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।